दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज की आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें परम शांति प्राप्त करने के लिए सुखमनी प्रदान किए। जो व्यक्ति किसी संत महापुरुष के मुखारविंद से सुखमनी की कथा को सुन लेता है और सुनकर मनन करता है, मनन करके अपने जीवन में घटाता है, वह व्यक्ति शरीर के समाप्त होने से पहले पहले कैवल्य मोक्ष अर्थात सुखमनी अर्थात परम सुख को प्राप्त कर लेता है। इस कथा को सुनने से पहले दो बातों की आवश्यकता है। कि जो व्यक्ति आपको यह कथा सुना रहा है और कथा और ईश्वर, ये तीनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा। यूं तो उस कथा सुनाने वाला मैं नहीं हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह शरीर एकमात्र बांसुरी है और इसमें बजाने वाला कोई और है, बजाने वाला तो अकाल पुरख वाहिगुरु। इसलिए साध संगत जी, जैसे जैसे आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति प्रेम का आविर्भाव होगा, बढ़ेगा आपके अंदर, त्यों त्यों सुखमनी का महात्म, सुखमनी का ज्ञान, सुखमनी की भक्ति आपके हृदय में उतर जाएगा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी के माध्यम से आज उपदेश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के नाम को सुनता है और परमात्मा के नाम को मुंह से उच्चारण करता है, जाप करता है, उसकी महिमा बता रहे। साध कै संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। जो व्यक्ति, पहले बता चुका हूं कि साधु किसे कहते हैं, जिसने साधना के द्वारा इसी शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लिया है। जो व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया है कि जो आत्मा इसके अंदर है वही सबके अंदर है, जो सबके अंदर है सो इसके अंदर है, वह व्यक्ति किसी से वैर विरोध नहीं करता। उसके लिए सगल संग हमको बने आई, वो सबको समान रूप से प्रेम करता है। ऐसा जो साधु है, जो समदर्शी है, सबको अपने हृदय में स्थान देता है, ऐसा जो साधु है उसका संग करके यदि हरि के गुण को आप सुनते हो और मुंह से उच्चारण करते हो तो आपका जीवन महान हो जाएगा, आपके जीवन में परम शांति की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक राजा परीक्षित हुआ है, बहुत धर्मात्मा राजा है। वह शिकार करके आ रहा था तो कलयुग आने के कारण उसकी बुद्धि थोड़ी मलिन हो गई, क्योंकि हमारे मन पर अन्न का प्रभाव पड़ता है, युग का प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव पड़ता है, और हमारा कर्तव्य क्या है, क्या काम करते हैं, उसके ऊपर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। राजा परीक्षित जंगल से आ रहा है, पानी प्यास लगा, देखा कि एक कुटिया है, कुटिया में देखा एक महात्मा समाधि में बैठे हैं। राजा का बुद्धि मलिन होने के कारण वो बार बार आवाज देके कहता है, अय महात्मा जी मुझे पानी दे दो, अय महात्मा जी पानी दे दो। लेकिन उनकी वृत्ति दशम द्वार में टिकी हुई थी जिसके कारण उनको पता नहीं चला। राजा ने क्रोध में आकर के, वहाँ पर एक मरा हुआ सांप था, तीर से उस मरे हुए सांप को लेकर के उस महात्मा के गले में डाल दिया। और वहां से चला गया राजा। वह महात्मा गृहस्थ जीवन में होता था, लेकिन उसका जीवन बहुत उत्तम था, तपस्वी था, महापुरुष था। उसका लड़का खेलता हुआ आया, वो भी तपस्वी था। उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देख करके क्रोधित हो गया और कमंडल से पानी लेकर अपने हाथ में मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिया कि जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है वह आज से सातवें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। साध वचन अटला था। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया वृथा न जाए। जब उसके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है राजा को, तो वह महात्मा ने कहा, पुत्र तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया है, जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा, लोगों को भला करने वाला और प्रजा को सुख देने वाला राजा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? उस महात्मा ने राजा को संदेश भेजा कि हमारे पुत्र ने क्रोध में आके श्राप दे दिया है, वह श्राप तो अटल ही होगा, लेकिन हे राजन, इसके उपाय बचने का आप अवश्य कर लो। राजा परीक्षित ने बहुत से महात्माओं को बुलाया और कहा कि कौन ऐसा तरीका है जिससे मैं मृत्यु से पार हो जाऊं, मैं ना मरूं। सारे महात्माओं ने कहा एक ही तरीका है कि तुम सात दिन किसी ब्रह्म ज्ञानी के मुखारविंद से भागवत सुन लो। भागवत की कथा आरंभ हुई। आरंभ जब होने लगा तो 33 करोड़ देवताएं आ गए अमृत लेकर, और राजा परीक्षित को कहता है, ऐ परीक्षित, तुम ऐसा करो, ये अमृत तुम ले लो, क्योंकि तुमको श्राप मिला है मरने का, ये अमृत पी लो और तुम नहीं मरोगे, और ये कथा जो है इसके बदले मैं सुन लेता हूं, मैं अमृत देता हूं और इसके बदले में मैं कथा सुन लेता हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि ये अमृत पीने से एक शरीर सिर्फ जिंदा रहेगा बहुत काल तक, लेकिन हमको महापुरुषों ने कहे हैं कि कथा रूपी अमृत पीने से अनंत जन्मों का जो बंधन है वो कट जाता है, और कथा तो महाअमृत है, सबसे उत्तम हर की कथा। वहां पर प्रेक्षित कहता है, नहीं, कहां कथा रूपी अमृत और एक मामूली तुच्छ अमृत जो समुद्र से निकला है, कथा की तुलना कर सकता है? नहीं, हे देवताओं, तुम अपना अमृत ले जाओ, मैं कथा रूपी अमृत सुनूंगा। यहां पर कहने का भाव यह है, जो धुर की वाणी है उसका सुनना अमृत है, और इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। इसी चीज को साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, साध कै संग सुनव हर नाव, संत महापुरुष के मुखारविंद से के साथ मिलकर के हरि के गुण को गाओ। साध कै संग सुनव हर नाव, साधु के मुखारविंद से हरि के नाम का श्रवण करो, सुनो, क्योंकि जो दूसरा अमृत है मुंह से पिया जाता है, कथा रूपी अमृत कान से पिया जाता है, और जो अमृत कान से पी जाती है उससे जीवन का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान रूपी परम प्रकाश अंदर प्रकट होता है, जिससे मनुष्य के सारे बंधन जन्म मरण समाप्त हो जाता है और सुखमनी की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी, आपको निश्चय करना है कि हम किस प्रकार जीना है। साध कै संग सुनो हर नाव, साधु का संग करके हरि के नाम को सुनो, साध संग हर के गुण गाओ। और ये नियम है कि जो व्यक्ति सुनेगा उसी का मनन होगा मन में। साधु का संग करके हरि के नाम को सुनोगे तो निश्चित है कि तुम्हारे मुंह से हरि का नाम ही उच्चारण होगा। साध संग हर के गुण गाओ, पहले तो हरि के गुण को सुनो फिर हरि के गुण को गाओ, लेकिन साधु संग, साधु का संग करके। बहुत से लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी, मैं इतना किताब पढ़ा हूं, ये पढ़ा हूं, तो इससे नहीं होगा। मैं तो सीधा कहता हूं, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। साधु के बगैर यदि तुम तरना चाहते हो तो ये असंभव काम है। साध के संग न मनते बिसरय, साध संग सर पर निस्तरय। और एक आप लोगों से विनती है कि कथा आरंभ होने से पहले, शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आओ, कि जब कथा आरंभ होती है, शुरू होती है ना, तो जो 5 मिनट बोलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ समाधि में बैठ के बोलूँ, और वो आपके अज्ञान को दूर कर सकता है। यो तो सारी वाणी अमृत है, लेकिन हमेशा कथा का नियम है कि वक्ता से 10 मिनट पहले आना है। साध कै संग न मनते बिसरय, साध संग सर पर निस्तरय। साध कै संग न मनते बिसरय, मन में कभी साधु का संग का विसारो नहीं, भुलाओ नहीं। अर्थात जीवन में संग ही करना है तो एक संत महापुरुष जो नाम लेवा है, जिसने परमात्मा को अपना मित्र बना लिया है, ऐसे के संग करो, जिसके संग से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। संग की महिमा क्या बताऊं, साधु के संग की। एक समय की बात है कि एक संत भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। पहले के संत महापुरुष दोपहर के टाइम में हरि नारायण करके भिक्षा मांगते थे, लोग प्रेम से सत्कार से भिक्षा देते थे, खा लेते थे। आज सब कुछ चेंज है, सब कुछ बदला हुआ है। सब कुछ बदलने के बावजूद भी यदि साधु के साथ तुम्हारी प्रीति नहीं बदलती, तो सब कुछ बदलने में भी जो मूल चीज है वो नहीं बदलता है। वो साधु भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये वेश्या का घर है। वहां गया और वहां जाकर के कहता है, हरि नारायण दो रोटी दे दो। वेश्या ने उस संत को ऊपर ले आया, महात्मा जी आओ और आप भिक्षा ले लो। उसके मन में ग्लानी था कि मैंने सारी जिंदगी पाप किया, इस पाप का क्या होगा। वो महात्मा को बहुत प्रेम से रोटी खिलाती है और बाहर बारिश होने के कारण वो कहती है कि महात्मा जी 10 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठ जाओ। भोजन बहुत प्रेम से खिलाने के बाद अपना दुख बताती है कि पता नहीं हमने पूर्वजन्म में क्या पाप किया है और इस जन्म में हमने बहुत घोर पाप किया है, आप कृपा करो, मैं आपके चरणों में मैं प्राण छोड़ने को तैयार हूं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। यदि कोई संत महापुरुष तुमको भाग्य से मिल जाए तो तुम अपनी अकल को कूड़े में डालो और संत के वचन को अपने हृदय में रख लो, अपनी बुद्धि का ज्यादा महत्व ना दो। साधु मति ही तुमको तार सकता है। उस वैश्या का नाम था गनका। वो गनका जब प्रार्थना करी तो महात्मा जी सोचते हैं कि यदि इसको कहेंगे राम राम गोविंद गोविंद वाहिगुरु सुमरन करो, ये करेगी नहीं। संत के पास कोई ना कोई युक्ति होता है, टेक्निक। कहते हैं एक काम करोगी तुम, कहते हैं हाँ, मेरे पास एक तोता है, मैं 40 दिन के बाद आऊंगा, इस तोते को ले जाऊंगा, लेकिन तुम एक काम करना, सुबह और शाम इसको 1 घंटे तक राम राम इसका जाप कराना है, इसको पढ़ाना है और उसके बाद मैं आऊंगा, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। हुक्म मनिए होवे परमान तक खसमे का महल पाए से। वो गनका हुक्म मान करके सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम राम का नाम उसे पढ़ाती है और जैसे जैसे वो पढ़ाती गई राम का नाम, वो राम का नाम लेने से उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। अभी ध्यान का क्लास लिया नहीं, 1 हफ्ता कल समाप्त तो हुई है, आज से नया क्लास शुरू हुआ है। तो बहुत से लोग पूछते हैं, स्वामी जी 1 हफ्ता हो गया और तो नहीं कुछ करना। अरे ये 1 हफ्ता तो ट्रेनिंग पीरियड है तुम्हारा। मैं तो उस महात्मा ने एक घंटा बोला, मैं तो तुमको आधा घंटा कहता हूँ सुबह और आधा घंटा शाम, सिर्फ ध्यान करो। ध्यान की गहराई में ही अमृत मिलना है। सारी साधनाओं को छोड़कर हरि का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। और ध्यान तो एक ही का होता है, या तो संसार का हो या परमात्मा का। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप चाहते हो अमृत को प्राप्त करना तो हरि का ध्यान करो, वरना जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो। यहां पर भाई गुरदास जी लिखते हैं, गनका पापण होए के पापा दा गल हार परोता, महापुरुष अचानक अचानचक गनका वाड़े आए खलोता, दुर्मत देख दयाल होए हथौ उसनो दितुन तोता, राम नाम उपदेश कर खेल गया देवणज सवोता, लिव लगी तिस तोतियोह नित पढ़ाए करे असोता, पतत उदाहरण राम नाम दुर्मत पाप कलेवर धोता, अंतकाल जमकाल तोड़ जमजाल तोड़ नरकय विच न खाद सो हो गोता, गई बैकुंठ विवाण चढ़ नाव रसायन छोड़ अछोता, थाव निथावे मान मनोता। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जैसे जैसे गनका हरि का नाम लेती है वैसे वैसे उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और समय पाकर के जब उसकी मृत्यु हुई तो वहां से यमराज आ गया लेने के लिए। जब यमराज लेने के लिए आया, क्योंकि पाप बहुत करी थी ना, और तुरंत झट धर्मराज 33 करोड़ देवता भी आ गए स्वागत करने के लिए। यमराज पूछते हैं, आप लोग क्यों आए हो फूल वगैरह लेके और स्वागत करने, किसको? ये तो बहुत पापन है, हमने तो इसको ले जाना है और बहुत बहुत कष्ट देना है। कहते नहीं, ज्ञान अग्नि कर्म दग्धानी, और इसने जो है राम का नाम लेने से इसके पाप सारे जल गए हैं और यह तो अब प्रभु के धाम में जाएगा। इसको स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर बहुत सजावट कर। बहुत से लोग कहते हैं इसने बहुत पाप किया इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पहाड़ जितनी रुई हो, पहाड़ जितनी, तो उसको जलाने के लिए पहाड़ जितनी अग्नि चाहिए? भाई जी खालसा जी बताओ कितनी अग्नि चाहिए? पहाड़ जितनी रुई हो तो इतनी अग्नि काफी है उस सारे रुई को जलाने के लिए। भाई जी तिल्ला ठीक सत वचन है, एक तिल्ला काफी है। इसी तरह से अनंत जन्मों के पहाड़ जितने पाप हों, एक राम ही काफी है, वाहिगुरु ही काफी है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहे गुरु जो मंत्र है, यह आपके सारे पापों को जलाकर अंदर सुखमणि का वास देगा। यह लेकिन यह सारे काम साधु संग से होगा, ये साधु के संग से हुआ है। साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग घटकट डीठा। साधु के संग करने से प्रभु मीठे लगते हैं, ऐसे कड़वा लगता है क्योंकि लिया नहीं जाता। साधु लोग जो है ना उसके अंदर थोड़ा खंड वगैरह डाल देते हैं, बहुत रोचक बना देते हैं, रोचक बना देते हैं। रोचक कैसे बनाते हैं? महानता बताते हैं। आप यदि किसी चीज की महानता बताओने तो उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा होता है। संत महापुरुष परमात्मा का, और जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने हरि का नाम लेकर के उत्तम पदवी को पाया है, जब उसकी महानता को बताते हैं तो जिज्ञासु को राम नाम लेने का, वाहेगुरु नाम लेने का मन में उत्साह पैदा होता है। साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साधु का संग इतना महान है कि कहा नहीं जा सकता कि साधु जो है सो कितने महान होते हैं। एक समय की बात है कि बाबा नंद सिंह जी महाराज किसी बाग में बैठ करके भजन कर रहे थे, तो भजन करते करते उनकी परमाणु इतनी थी, इतनी शक्ति थी कि लोग खींचे हुए आते थे, क्योंकि फूल बताता नहीं है कि मेरे अंदर खुशबू है प्लीज कम ऑन, ऐसे नहीं बोलता फूल। फूल की खुशबू जब हवाएं लेकर के दूर जाती हैं लोग खींचे हुए आते हैं खुशबू लेने के लिए। इसी तरह से जो महापुरुष संत साधु जब भजन करते हैं उसका प्रताप ऐसा होता है कि लोग खींचे हुए आते हैं और अपनी जो मुरादें जो है वहां से पूरी करके जाते हैं। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बाग में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। जब लोगों की आवाजाही बहुत हो गई तो वो एक वहाँ पर आश्रम था वहाँ चले गए, क्योंकि वो आश्रम वाले ने बहुत विनती किया था कि महाराज आप हमारे कुटिया में चरण पाए। और संत महापुरुष जो होते हैं हर एक की मन की भावना पूरा करते हैं। जब वहां चले गए तो वहां दो कमरे उन्होंने ले लिए, एक उनके साथ सेवादार लोग थे दूसरे कमरे में रहने लगे, और बाबा जी कमरे में बैठ के एक समय रोटी खाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं। और हमेशा उनकी वृत्ति जो है सो अखंड मंडलाकारम, जो अखंड स्वरूप वाहेगुरु है व्यापक, उनमें उनकी वृत्ति एकमिक हुआ हुआ है। माताएं हर एक जगह पहुंच जाती हैं, ये लीला है प्रभु की है। और संतों का काम भी माताओं के बगैर बहनों के बगैर चलता नहीं, आश्रम हो डेरा हो गुरुद्वारा हो उसकी शोभा ही। माताएं बहनें बहुत आ गईं, लेकिन बाबा जी का वृत्ति लगा होने के कारण काफी समय तक वो कमरे से बाहर नहीं आए। उनके सेवादार बार बार कमरे में जाते हैं, जाके देख के आते हैं बाबा जी की वृत्ति लगी, वो कहते हैं माता जी बाद में आ जाना थोड़ा ठहर के। माताएं कभी कभी ने बोलने से हिचकती भी नहीं ना, माताएं कहती हैं कि बाबा जी को लुको के रखे हो, बाबा जी हमारे से ही आए हैं, कोई आकाश से नहीं आए, बाबा हमारे ही पेटों से आए हैं जी। बाबा जी अंदर कमरे से जब वृत्ति उनकी नीचे आई ये शब्द उन्होंने सुन लिए। सेवादार लोग अंदर आए तो बाबा जी पूछते हैं कि संगत क्या कह रहे थे, कहते हैं माताएं कह रही थी कि बाबा जी को तुम अंदर रखे हो बैठा करके, ये बाबा जी कोई आकाशों नहीं आए हैं हमारे पेट से ही आए हैं। कहते हैं उनको जाके, बाबा जी कहते हैं उनको जाके कह दो कि मैंने 9 महीना बहुत कष्ट सहा है पुठे लटक करके, आगे से नहीं आना तुम्हारे पेट। इसका भाव क्या है? अब जो है जो कर्म का बंधन है वो टूट चुका है, सारे जो कर्म हैं जल गए हैं, बीज नष्ट हो गया है। अब तो ज्यों जलमह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, जो महाज्योत में लय हो गया हूं, अब से आगे से मेरा जन्म मरण नहीं होगा। बाबा जी ने अपना अनुभव बताया। सात संग जी महापुरुषों की लीला अपार है। एक समय की बात है कि धन बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठे थे तपस्या कर रहे थे एक बाग में, और कभी कभी एक वहाँ पर कमरा था बना हुआ साधारण सा, वहाँ चले जाते थे फिर बाग में ध्यान करते थे। एक उत्तम सिंह था। उत्तम सिंह जो है पहले तो अच्छा था, उसके पास धन था काफी और बाबा जी की सेवा करता था, लेकिन बाबा जी ने उसकी सेवा उत्तम सिंह की सेवा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि इसको क्या दें। और मैं पहले बता चुका हूं कि जब परमात्मा या संत, परमात्मा कह दो, संत कह दो, साधु कह दो, एक ही बात है, समझे कि नहीं। संत जो है ना, चलते फिरते परमात्मा है। बस एक परिभाषा संत की हमारे तरफ से नोट कर लेना आप लोग, कि संत या साधु उसको कहते हैं जो चलता फिरता परमात्मा। वो विचार करते हैं बाबा जी इसको क्या दें। जब परमात्मा या साधु थोड़ा प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी जो इच्छाएं होती हैं, पुत्र मिल जाए या धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, थोड़ा प्रसन्न होने पर तुमको ये दे देते हैं। लेकिन संत किसी पर रिझ जाए, संत जो है दीवाना हो जाए किसी सेवक पर, तो फिर उसके धन को छीन लेते हैं और उसके धन को हर करके उसको परमात्मा का नाम देते हैं, उसको परमात्मा के चरणों से जोड़ते हैं। वहां पर क्योंकि गुरबानी में आया है, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। जब प्रभु जब बहुत कृपा करते हैं ना, तो गरीबी, नम्रता गरीबी बसाता है। नानक यहाँ मुक्त आ गए सुख पावे, यहाँ वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है पुरुष। और यहाँ पर अति कृपा मैं करी हूँ ताकि सुख संपत्ति सब हरे हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी रामायण में भगवान राम कहते हैं कि जिस पर मैं बहुत कृपा करता हूँ उसकी संपत्ति को छीन लेता हूँ। इसीलिए यदि किसी को घाटा लग गया है ना बिजनेस वगैरह में बहुत, तो आज से खुशी होना है कि प्रभु ने हम पर बहुत कृपा की है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे चरणों में लग जाओ, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। और दो रोटी कपड़ा के लिए तो वो तो वचन दे ही दिए हैं कि पहले देते हैं रिजक समाहा, पीछो देते हैं जंतु पाहा। इसलिए कभी संतों के पास रोना नहीं है, वो एक ही चीज मांगो कि हमें प्रभु से कैसे जुड़े। वो सिख जिसका नाम उत्तम सिंह है, बाबा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। जैसे जैसे वो सेवा करता है वैसे वैसे उसके बिजनेस में घाटा लगता जाता है। देखो कहते हैं कि जी, बहुत से आते हैं कहते हैं स्वामी जी जो लोग हेरा फेरी करते हैं, देखो इतना फल फूल रहा है, और हम जैसे 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 गुरुद्वारे जाते हैं सेवा करते हैं, हमारा जो है सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मैं तो कभी कभी सीधा ही बोल देता हूँ, यही तो कृपा है प्रभु की, और क्या कृपा है। तुम्हारे 10 बिजनेस होते तो तुम आ सकते यहाँ बैठते, बैठ के सुनते कथा, वहाँ तो टेलीफोन पर टेलीफोन होता है, यहाँ पर आने का कहाँ टाइम मिलता। वहाँ पर जी उत्तम सिंह के घर में एक बकरी था, वो रोज दूध लेकर के बाबा जी को पिलाने के लिए आता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप बाबा जी के लिए दूध ले जाते हो रोज, अच्छी बात है, मैं भी सहमत हूं, लेकिन एक थन जो, दो थन है, एक थन रहने दिया करो, एक थन जो है का दूध बाबा जी को पहुंचा दिया करो, एक थन का दूध बच्चों के लिए रख दिया। वहां पर उत्तम सिंह कहता है कि भलिए, ये महापुरुषों का जो हम दूध पिलाते हैं, इनसे वो भजन सुमरण करते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, यही शोभनीक है। बच्चे को तुम अपना दूध पिलाया कर, और कभी कभी थोड़ा बहुत भूखा रहे तो दाल जो है थोड़ा बहुत उसको चम्मच से दे दिया करो। जब उत्तम सिंह आया बाबा जी के पास तो बाबा जी मुस्कुराए, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पुछानत। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी हैं, त्रैलोकदर्शी हैं, साक्षात ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। कहते हैं उत्तम सिंह तुमने एक ही थन का दूध लाया कर, क्योंकि दूध ज्यादा हो जाता है, बाबा जी का वचन ये सुनकर के चरणों में गिर पड़ा। सच्चे पातशाह, आप तो घट घट के जानत हो, वो तो स्त्रियों का स्वभाव होता है कंजूसी का, आप उसकी जो है बातों में ना हो। ये आपका चीज है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा क्या है जो देता हूं। कहते नहीं, मेरी इच्छा है एक ही। साध संगत जी दूसरे दिन से एक बाबा जी का वचन मान करके एक थन का दूध उत्तम सिंह ने लेकर के गया और अपनी पत्नी को बोला कि दूसरी थन का दूध तुम निकाल लेना, बच्चे को दे दे। दूसरे थन से कोई दूध नहीं आया और वो बकरी कहते हैं कि 10-15 साल तक जिंदी रही, दूसरे थन में दूध नहीं आया। ये संत महापुरुष जो है ना, कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले हजार बार सोचो। साधु की महिमा को वेद नहीं जान सकता, आम आदमी की तो बात ही छोड़ो। संत महापुरुष जो हैं चलते फिरते परमात्मा होते हैं। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भय हमारी। जिन जिन लोगों ने साधु का संग किया है वह परम गति को प्राप्त हुआ है। परम गति अर्थात मोक्ष। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग मिटे सब रोग। सर्व रोग क्या है, सब रोग क्या है? अविद्या जो है, अज्ञान, यही सारे रोग है। सारे रोगों की जड़ अविद्या है और उस अविद्या के कारण हमारा और परमात्मा के बीच एक पर्दा है, तो वो है अविद्या का, अज्ञान का। उस अज्ञान के कारण हम जन्म जन्मांतरों से बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण। ये सारे रोग, सारा जो रोग है वो है अज्ञान, अविद्या। साध कै संग मिटे सब रोग, सारे रोग जो है वो मिट जाता है साधु के संगत से। नानक साध भेटे संजोग, लेकिन साधु जो मिलते हैं तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई पुण्य होता है। लेकिन मिल जाएं और फिर ना पहचानो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे गुरु साहिबान हुए हैं, हमारे भक्त हुए हैं 15 साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। कितने लोगों ने पहचाना होगा? मेरे हिसाब से गिनती के लोग होंगे जो उनको पहचाना होगा कि ये साक्षात परमात्म स्वरूप है, नहीं तो बाकी लोग तो टिंचर ही करते रहे होंगे। छोड़ते नहीं लोग, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो साधु को पहचान करके उनसे नाम दान लेकर के अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। वरना जो साधुओं के साथ मन में भी यदि कुछ गलत सोचा तो समझ जाओ कि उसने अपना नाश कर लिया, क्योंकि साक्षात परमात्मा होते हैं साधु। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुनह तेता बखियाने। साधु की महिमा को वेद भी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वेद जो है अंत में कह दिया है परमात्मा के स्वरूप का कि नेति नेति नेति, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ना इति ना इति, वो बेअंत है, बेअंत है, वेद ने कहा। लेकिन जो परमात्मा बेअंत है, जो अलख है, लखा नहीं जाता, साधु उसको भी तुमको लखा देते हैं, जना देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। जो अलख है उसको लखा देते हैं, जो बेअंत है उसको भी तुमको तुम्हारे अंदर दर्शन करा देते हैं। ये साधु की महिमा है। साध की महिमा वेद न जाने है, जेता सुने तेता बखियाने। साधु की महिमा का बखान कोई भी पुरुष कर नहीं सकता है। साध की उपमा तेह गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की उपमा तेह गुणते दूर। ये जो सारा संसार है ये तीन गुणों से बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। साध की उपमा तेह गुणते दूर, साधु की जो महिमा है उपमा है ये तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सो। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, और कोई नहीं जान सकता। आम आदमी तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचता है कि जैसा हम खाते हैं जी वैसा वो खाता है, जैसा हम सोते हैं वैसा वो सोता है, जैसा हम पैसा रखते हैं वो रखते हैं पैसा, हमें वो क्या अंतर, कोई अंतर तो है नहीं। हम बाहर से अंतर देखते हैं, बाहर से तुलना करते हैं, ये नहीं देखते कि साधु का एक हाथ जो है तुम्हारे पास होता है, दूसरा हाथ उसका प्रभु से जुड़ा होता है। अंदर से उनकी वृत्ति जो है परमात्मा से होती है और बाहर से वो जगत में होते हैं, उसका कारण होता है सिर्फ तुमको तारना, और कोई उसका मकसद नहीं होता। साध की उपमा तेह गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत। साधु की जो महिमा है उसका कोई अंत नहीं है। हम चाहें कि साधु की महिमा का कोई अंत पालें तो ये असंभव है। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साधु की जो महिमा है वो बेअंत है, क्योंकि मथुरा जावे द्वारका भावे, जावे जगन्नाथ, साध संगत हर भजन बिन कछु न आवे काम। जहां मर्जी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, मक्का मदीना चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, गोविंदवाल चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन साध संगत, साधु का संगत और हरि का कीर्तन और भजन, ये जीवन का सार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। आप हाथ में फूल रख लो ना, और फूल रख करके थोड़ा देर, इंडिया का फूल यहाँ का नहीं फूल, थोड़ा देर हाथ में रख लो और उसको फिर तुम कहीं रख दो तो फिर भी हाथ से खुशबू आता है। इसी तरह से यदि तुम एक घड़ी आधी घड़ी भी किसी साधु संत का संग किया है ना, तो उसकी खुशबू तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगा, ये निश्चित बात है। तुम्हारे अंदर भी शांति, तुम्हारे अंदर भी आनंद, तुम्हारे अंदर भी कुछ शुभ करने की भावना स्वाभाविक आ जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। संत का जो चित्त है इतना सरल होता है कि वो हरेक को स्नेह करता, हरेक को गले लगाता है। ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हम। संत का वैरी कौन होगा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। लोका भ्रम ना भूलो, संत का हृदय ऐसा होता है। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। संत का जो जीवन है एक बच्चे की तरह सरल हो जाता है, अति सरल। अंदर से ऊंचाई जो है वो परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा होता है अंदर, लेकिन बाहर से इतना सरल हो जाता है कि एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हारे साथ कभी कभी खेलने लगते हैं, अहम नहीं होता। साध की शोभा सदा बेअंत, साधु की जो महिमा है वो बेअंत है, वो कहां नहीं जा सकता कि वो क्या क्या उसके गुण को बखान करें। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। साधु की जो महिमा है ऊंचा से ऊंचा है, बेअंत है। आप जितना मर्जी ऊंचा कहो उससे भी ज्यादा ऊंचा है। जहां पर मन वाणी और शरीर नहीं जा सकता उससे ज्यादा साधु की महिमा है। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। अंत में तो गुरु महाराज ने फैसला कर दिए हैं, साध की शोभा साध बने आई। साधु की शोभा को साधु ही जानता, और नहीं कोई जान सकता। और आगे की पंक्ति तो जो है वो एक्सट्रीम है, नानक साध प्रभ भेद न भाई। नानक साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि साधु और प्रभु में, परमात्मा में, वाहिगुरु में कोई भेद नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि परमात्मा को आंखों से दर्शन करना चाहते हो और चलता फिरता भी देखना चाहते हो तो साधु का दर्शन कर। ऐसे तो साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहे, परमात्मा का वर्णन किए हैं वाहिगुरु का, के चक्र चिहन अर वरण जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय। जो निरंकार वाहेगुरु है उसका कोई चक्र नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है अंदर। लेकिन आप चाहते हो कि मैं आंखों से भी देखूं परमात्मा को और उसके साथ थोड़ा चलूं भी और सेवा भी करूं। अब जो आंखों से नहीं दिखता उसका क्या सेवा करोगे आप? लेकिन आपका चित्त में है कि थोड़ा हम सेवा भी करें परमात्मा को, उसके साथ भी चलें और आंखों से भी दर्शन करें और उनका कानों से भी सुने, तो साधु का संग कर बस। क्योंकि साधु जो है चलते फिरते परमात्मा है। क्योंकि गुरु महाराज ने अंतिम श्लोक में फैसला कर दिए हैं कि नानक साध प्रभ भेद ना भाई, साधु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संत अनंत अंतर नाही, ये भगत रविदास जी भी कह रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी को और भगत भी कह रहे हैं कि संत अनंत है। अनंत है कहते हैं परमात्मा को जो अनंत है। संत और अनंत है अंतर नाही, संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं। श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। आज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण कह रहे हैं कि यदि हम उसको पहचानना चाहें ब्रह्मज्ञानी को तो कैसे पहचान सकते हैं? कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण बताएं, और यदि थोड़ा बहुत कहीं लक्षण मिले तो बस तुम झट से जो है सो संग उसका कर लो। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मन साचा मुख साचा सोए। इस चीज को भगवान बुद्ध ने सील कहे। सील, सील का मतलब होता है कि अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। जो बोलता है पहले उसके जीवन में हो, बोलने से पहले उसके जीवन में हो, उसको सील कहते हैं। सील का भाव यह है कि अंदर और बाहर दो ना हो, एक जैसा। यहां तो होता क्या है कि किसी एक समय की बात है, एक कोई आदमी किसी के घर में गया और पूछा कि सरदार जी हैं घर में? तो सरदार जी कहते हैं पत्नी को कि जाके कह दो कि वो घर में नहीं है। वो बच्चा भी वहां पर था, वो सुन लिया, वो दौड़ा दौड़ा आ गया बाहर, कहते हैं पिताजी हमारी मम्मी को कह रहे कि पिताजी नहीं है। ये बच्चे का हृदय देखो, अंदर बाहर ही। लेकिन हमारा क्या है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है? ऐसा इसीलिए तो मैं बताने के, जो संतों का जो हृदय है ना वो बालक जैसा होता है। सील का भाव ये है कि जो जीवन में हो वही बोलना है, जो हमारे जीवन में नहीं हो वो बोलना तो बकवास है, कुछ नहीं, फिजूल है। जो हमारे जीवन में हो, जो अनुभव हो अंदर, जो साधना के द्वारा हमने अनुभव किया वही लोगों को बताना है, जो अनुभव में नहीं है उसको नहीं बताना, उसको कह देना है कि कोई ग्रंथ में पढ़ लो या किसी महापुरुष से सुन लो। और जिसने किसी महापुरुष के पास जा करके 10-15 साल सेवा करके उसके हुक्म मान करके, किताबों से विद्या, ब्रह्म विद्या नहीं आती। कितना पढ़ लोगे? नारद ने 1000 बरस तक विद्याएं पढ़ा, उसने 1000 बरस तक, 1000 बरस तक विद्याएं पढ़ा, सारे ग्रंथ जो है पढ़ लिया, शांति नहीं मिला उसको। वो फिर जा करके गया बृहस्पति के पास। नारद कहते हैं मैंने 1000 बरस तक सारी विद्याएं पढ़ लिया हूं, हमको शांति नहीं है। वहां पर बृहस्पति उपदेश करते, हे नारद, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, भूमा नाम परमात्मा का, वाहेगुरु का। हे नारद, जो भूमा है, वाहेगुरु है, परमात्मा है, वो सुखमनी है, आनंद स्वरूप है, और वह आनंद ग्रंथों में नहीं है, आनंद तुम्हारे हृदय में है। तब से नारद ने सारे ग्रंथों को रख दिया अलमारी में ताला लगा करके, और एकांत में जा करके प्रभु का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते उसका मन शुद्ध हुआ और अंदर ही उसने आनंद का अनुभव किया। आनंद सुखमनी वो तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें खोजने की जरूरत है, उसे अभ्यास करने की जरूरत है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मन साचा मुख साचा सोए, जो अनुभव में हो वही बोलना, जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चिया। जिसके मन में कुछ है, मनस से किम बचस से किम, मन किसी के साथ, वाणी किसी के साथ, सोच किसी के साथ रहा है। आज का मनुष्य देखो ना, जब बातें करता है तो मैं उसको देखते रहता हूँ, कभी कभी बोल तो रहा है मेरे साथ, चित्त किसी से जुड़ा है, सोच कुछ रहा है। आदमी जो है कभी वर्तमान में तो होता नहीं है, कभी वो भूतकाल पास्ट में और कभी फ्यूचर में। पास्ट जो बीत गया है वो कूड़ा करकट ढोए फिर रहा है, आगे जो होगा उसकी कल्पनाएं मन में संजो रहा है। और है जिंदगी क्या? पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। लेकिन कथा में जो आप लोग सुनते हो ना, कथा सुनते सुनते तुम्हारी समाधि होती है। जिस वक्त संसार का, पास्ट का और फ्यूचर का ख्याल ना हो, कथा के साथ तुम्हारी वृत्ति तदाकार हो जाए, जुड़ जाए, समझ जाओ तुम आंख खोल करके समाधि में बैठे। जहां पर समय का भान ना हो कि जगत में क्या हो रहा है। बहुत से लोग, माताएं बहनें आती हैं, बहुत से सज्जन भी आते हैं, यहाँ पर एक दो लोग आए कमरे में, कहते हैं कि स्वामी जी मैं सत्संग सुनते सुनते हमको बाहर जो है प्रकाश होने लगा और कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा। मैं क्या, ये तुम्हारे पूर्वजन्म का शुभ कर्म है, अच्छी बात है। कथा के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि जैसे छोटा बच्चा जो है ना माँ के साथ गोदी में चिमड़ जाता है कि नहीं, ऐसे ही कथा के साथ चिमड़ जाना है, एकदम अंदर बसा लेना है हृदय को। श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोए। और नहीं देखना है, एक ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानी। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, वेद का मंत्र है कि एक परमात्मा है, एक परमात्मा के अलावे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अवर नापेख है एकस बिन कोई, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभु सोई। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आननाय। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय बिचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। एक जो वाहेगुरु है वो सब के अंदर है। ऐसा दर्शन करने वाला व्यक्ति अवर ना पेख है एकस बिन कोई। ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, ईश्वर जो है जगत के कण कण में व्याप्त है। जैसे दूध में घी होता है, ऐसे जगत में परमात्मा घुला हुआ है। जैसे मिश्री के अंदर बाहर मिठास होता है, ऐसे तुम्हारे अंदर बाहर परमात्मा ही है। यदि विचार करके देखो, वो कौन है जो इन आंखों से देखता है? तुम देखते हो? नहीं। कौन है जो श्वास ले रहा है? क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे बखियाना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी, तो कोई करो दिखाओ बखियाना। इसका ये भाव है कि सब कुछ ईश्वर के सहारे, ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोई। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अब यहां पर आप कह सकते हो कि मुझको तो संसार दिखता है, और आप कहते हो कि जो है ब्रह्म देखना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी आप शाम के वक्त सैर करने के लिए जाते होंगे, तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी गिरी होती है। ठीक से सुनना, इसी में सारा राज भरा हुआ है ये इस पंक्ति का। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी गिरी होती है और थोड़ा अंधकार के कारण आपको सांप दिखता है, और आपके साथ दो तीन सहेलियां या दोस्त जाते हैं, उसको रोकते हैं, उधर उधर ना जाओ, देखो सांप है, जो पांव पड़ जाएगा काट लेगा। और सारे लोग देख करके कहते हैं हाँ हाँ सांप है, लाओ सोटी लाओ, ये करो वो करो। उसमें से एक आदमी कहता है अरे डरने की जरूरत नहीं, ये रस्सी गिरा हुआ टेढ़ा मेढ़ा है। कहते नहीं नहीं मुझे तो सांप दिख रहा है। उसके पॉकेट में टॉर्च था, क्योंकि एक जो था ना वो साधु था ना, वो कहता है चिंता ना करो। उसने अपने पॉकेट से टॉर्च निकाला, टॉर्च, और उसको जला दिया। जलाने के बाद जो और लोग साथ में थे उसको रस्सी दिख गया। रस्सी को एक बार रस्सी देख लेने के बाद, बाद में सांप दिखे भी, लेकिन ज्ञान होता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। रस्सी को ना जानने से रस्सी ही सांप दिखता है। इसी तरह से परमात्मा को ना जानने के कारण परमात्मा ही संसार दिखता है। परमात्मा और संसार दो नहीं है। जब तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा गुरु की कृपा से, तो ये संसार ही परमात्मा दिखेगा। कोई संत टॉर्च मारेंगे ना, जलाएंगे तुम्हारे अंदर और कहेंगे तुम चिंता न करे संसार नहीं है। टॉर्च जलाएंगे और तुम अपनी आंखों से देख लोगे ओहो ये तो परमात्मा है। फिर तुम कहोगे ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा प्रण करण हारा प्रभु विनय नहीं जानिए। जब तुम्हारी वृत्ति ऐसी ब्रह्माकार हो जाएगी, तो मन साचा मुख साचा सोए, फिर आपका मन सच्चा होगा, मुख सच्चा होगा, आचरण सच्चा होगा। अवर न पेख है एकस बिन कोई, और चारों तरफ परमात्मा का दर्शन करोगे। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है। तो जब आप ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का आप संग करोगे महापुरुषों का, तो आपके जीवन में शांति आनंद अहोभाव और सुखमनी की प्राप्ति होगी। जिससे आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा होगा और आपका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।